एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और स्वागत है ग्रंथ सार की इस कड़ी में। आज हम बात कर रहे हैं एंथनी पावल की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और सच कहूं तो विशाल रचना पर।
जी, ए डांस टू द म्यूजिक ऑफ टाइम।
हाँ, और हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स, विश्लेषण है। ये कोई एक उपन्यास नहीं बल्कि 12 खंडों की पूरी श्रृंखला है।
12 खंड, सच में एक मैराथन है ये तो।
बिल्कुल, 20वीं सदी के ब्रिटिश साहित्य का एक मील का पत्थर मानी जाती है। तो आज हम कोशिश करेंगे इन स्रोतों से इसके सार को समझने की कि पावल का ये महाकाव्यात्मक नृत्य आखिर है क्या और आज भी क्यों प्रासंगिक है।
और ये शीर्षक ही ए डांस टू द म्यूजिक ऑफ टाइम, मतलब कितना काव्यात्मक है।
हाँ, हमारे नोट्स में भी उस पेंटिंग का जिक्र बार बार है, निकोलस पुसान की।
हाँ, जिससे ये प्रेरित है। 4 ऋतुएं जो जीवन के पड़ाव हैं, समय की धुन पर नाच रही हैं।
और यही पावल का केंद्रीय विचार है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि एक जटिल, बार बार दोहराया जाने वाला नृत्य है। लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, साथी बदलते हैं
और फिर अचानक कहीं और किसी नए रूप में सामने आ जाते हैं। एक चक्रीय पैटर्न है ना।
बिल्कुल, सीधी तरक्की से ज्यादा एक पैटर्न। और लेखक एंथनी पावल, वो खुद भी ईटन और ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, तो उस उच्च मध्यम वर्ग के ब्रिटिश समाज को वो बहुत करीब से जानते थे जिसका वो चित्रण करते हैं।
हाँ, उनकी पृष्ठभूमि उन्हें वो अंतर्दृष्टि देती है। और इस पूरे नृत्य को देखता कौन है? हमारा कथावाचक निकोलस जिंकिंस।
सही, वो सिर्फ दर्शक नहीं है, वो भागीदार भी है, और एक लेखक होने के नाते उसकी नजर भी पैनी है।
वो अपने लंबे जीवन में इस पूरे सामाजिक बैले को, इस ताने बाने को समझने की कोशिश कर रहा है। नोट्स में ये भी लिखा है कि उसका नजरिया प्रूस्ट के कथावाचक से थोड़ा अलग है।
हाँ, वो आंतरिक चेतना से ज्यादा बाहरी दुनिया, लोगों के आपसी मेलजोल, उस सामाजिक नृत्य पर ज्यादा ध्यान देता है।
अच्छा,
तो चलिए इस नृत्य के कुछ मुख्य नर्तकों, मतलब किरदारों से मिलते हैं, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। शुरुआत होती है निकोलस और उसके स्कूल के दोस्तों से।
हाँ, वो चौकड़ी
चार्ल्स स्ट्रिंगहम, आकर्षक, कुलीन, लेकिन थोड़ा आत्मविनाश की तरफ झुका हुआ। पीटर टेम्पलर, व्यवहारिक, दुनियादार, थोड़ा सनकी भी।
और
विडमपूल।
हाँ, केनेथ विडमपूल।
शारीरिक रूप से कुछ खास नहीं, सामाजिक तौर पर भी थोड़ा अजीब।
अजीब, हाँ, शुरू में तो लगभग हास्यास्पद लगता है, स्रोत यही कहते हैं, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति वो गजब की है।
बिल्कुल, उसकी दृढ़ता कमाल की है। ये चार लोग ही शुरुआती केंद्र हैं इस कहानी का।
और ये नृत्य अलग अलग मंचों पर होता है। कहानी शुरू होती है 1920 के दशक के एक इंग्लिश पब्लिक स्कूल से।
हाँ, फिर 30 के दशक का लंदन, बोहेमियन माहौल, राजनीति,
फिर द्वितीय विश्व युद्ध की उथल पुथल, और फिर युद्ध के बाद का ब्रिटेन 70 के दशक तक।
और ये सेटिंग सिर्फ पीछे का पर्दा नहीं है, स्रोत इस पर जोर देते हैं कि ये माहौल, समाज, राजनीति, युद्ध, ये सब किरदारों के जीवन को, उनके नृत्य को आकार देते हैं।
बिल्कुल, ये सक्रिय शक्तियां हैं।
अच्छा, तो पावल ने इस पूरी गाथा को 4 हिस्सों या कहें ऋतुओं में बांटा है। ये भी पुसान की पेंटिंग से ही लिया है।
हाँ, बसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शीत।
तो पहली है बसंत, जिसमें पहले 3 खंड आते हैं। ए क्वेश्चन ऑफ अपब्रिंगिंग, ए बायर्स मार्केट, द एक्सेप्टेंस वर्ल्ड। ये 1920 और 30 के दशक की शुरुआत है।
जी, ये किरदारों की जवानी का दौर है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, लंदन में करियर की पहली कोशिशें, पार्टियां, सामाजिक जीवन।
निकोलस कला और साहित्य की दुनिया में कदम रख रहा है।
हाँ, और यहीं पर वो विडमर पूल की धीमी लेकिन लगातार चढ़ाई शुरू होती है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ माहौल में हास्य है, युवा जोश है, लेकिन साथ ही
भविष्य के कुछ संकेत भी हैं।
हाँ, कुछ अंधेरे संकेत, जैसे स्ट्रिंगम का शराब की तरफ झुकाव या जीवन में एक दिशा ना मिलना। और विडमर पूल की वो अजीब सी सामाजिक महत्वाकांक्षाएं, वो भी यहीं दिखने लगती हैं।
फिर आता है ग्रीष्म, अगले 3 खंड, एट लेडी मॉलीज, कैसनोवास चाइनीज रेस्टोरेंट, द काइंडली वंस। ये 30 के दशक के मध्य से 1939 तक का समय है।
अब पात्र थोड़े स्थापित हो गए हैं, वयस्क जीवन, शादियां, करियर,
और पीछे यूरोप पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।
बिल्कुल, इसी दौरान निकोलस की शादी होती है इसोबेल टॉलेंट से, और ये शादी उसे एक बड़े, थोड़े विलक्षण से कुलीन परिवार से जोड़ देती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये उसे समाज के एक और ताने बाने से बुन देती है।
अच्छा, और विडमरपूल?
विडमरपूल का उदय अब और तेज हो गया है। नोट्स इशारा करते हैं कि वो अब कुछ संदिग्ध राजनीतिक और वित्तीय मामलों में भी शामिल है।
मतलब माहौल अब गंभीर हो रहा है?
हाँ, काफी। किरदारों के निजी जीवन में जो चल रहा है, बेवफाई, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, वो कहीं ना कहीं यूरोप के बड़े राजनीतिक मंच पर जो हो रहा है उसका आईना सा लगता है। और ये हिस्सा खत्म होता है ठीक द्वितीय विश्व युद्ध की दहलीज पर,
एक अजीब सी शांति के साथ, शायद।
हाँ, एक बेचैन करने वाली शांति।
फिर आता है पतझड़, यानी युद्ध के साल 1940 से 45। खंड है द वैली ऑफ बोन्स, द सोल्जर्स आर्ट, द मिलिट्री फिलोसफर्स। स्रोत कहते हैं कि यह श्रृंखला का सबसे अंधेरा, सबसे दुखद हिस्सा है।
हाँ, युद्ध पुरानी सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह हिला देता है, सब कुछ बदल जाता है।
निकोलस, स्ट्रिंगम, टेम्पलर, विडमरपूल सब सेना में हैं।
जी, लेकिन युद्ध का अनुभव सबके लिए अलग अलग है। निकोलस तो एक साधारण अफसर के तौर पर सैन्य नौकरशाही की बेतुकी बातों और युद्ध की व्यर्थता को देखता है,
लेकिन विडमरपूल के लिए ये अलग है।
बिल्कुल, उसके लिए युद्ध एक मौका है। उसकी जो जोड़ तोड़ की क्षमता है, नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आदत, वो उसे सेना में ऊपर ले जाती है, वो कर्नल बन जाता है।
ओ, और बाकियों का क्या?
बाकियों का अंत दुखद है। स्ट्रिंगहम, वो एक जापानी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में गुमनामी में मर जाता है।
ओ,
और पीटर टेम्पलर, वो एक खुफिया मिशन पर मारा जाता है। यहां आकर जीवन का नृत्य वाकई मौत का नाच जैसा लगने लगता है। स्रोत इसे पुरानी दुनिया के अंत की तरह देखते हैं।
बहुत भारी दौर है ये। और फिर अंत में है शीत, युद्ध के बाद का समय, 1970s के दशक तक, आखिरी तीन खंड, बुक्स टू फर्निश अ रूम, टेम्पररी किंग्स, हियरिंग सीक्रेट हार्मनीज।
हाँ, अब पात्र अपने जीवन के मध्य या आखिरी पड़ाव पर हैं। ब्रिटेन भी बदल चुका है।
निकोलस अब एक सफल उपन्यासकार है।
जी, और विडमरपूल वो सांसारिक सफलता के शिखर पर पहुंचता है, सांसद बनता है, लॉर्ड की उपाधि भी मिल जाती है।
लेकिन यहीं से उसका पतन भी शुरू होता है।
हाँ, खासकर पामेला फ्रिटन से उसकी शादी, वो विनाशकारी साबित होती है। पामेला जो स्ट्रिंगहम की भतीजी है, वो खुद एक तरह से अराजकता का प्रतीक है।
अच्छा,
उसका विडमरपूल से मिलना मतलब महत्वाकांक्षा और विनाश का एक भयानक मेल। सार्वजनिक घोटाले होते हैं, अपमान होता है, और इसका अंत?
अंत कैसा है? स्रोत क्या कहते हैं?
बहुत ही अजीब। वो एक अजीब से पंथ, एक कल्ट जैसा कुछ, उसका नेता बन जाता है और एक अनुष्ठानिक दौड़ के दौरान मर जाता है।
क्या? ये तो बड़ी विडंबना है।
है ना, पूरी जिंदगी शक्ति और नियंत्रण के पीछे भागा और अंत ऐसा। निकोलस अंत तक रहता है, इन सब उतार चढ़ावों को देखता हुआ, जीवन और मृत्यु के इन पैटर्न्स पर सोचता हुआ।
इन किरदारों की यात्राओं पर थोड़ा और सोचते हैं। निकोलस जेनकिंस, स्रोत कहते हैं कि वो सिर्फ देखता नहीं है।
नहीं, उसकी अपनी यात्रा है, अंदरूनी समझ की यात्रा।
हाँ, समय के साथ उसका नजरिया बदलता है, वो चीजों को ज्यादा गहराई से, ज्यादा सहानुभूति से देखने लगता है। वो सिर्फ कहानी नहीं कह रहा, वो अर्थ ढूंढ रहा है।
लेकिन विडमरपूल, वो तो पॉवेल का शायद सबसे यादगार किरदार है।
श्रोत उसे इच्छा शक्ति का अवतार कहते हैं।
हाँ, उसकी वो शुरुआती हास्यास्पद सी स्थिति से सत्ता के शिखर तक की यात्रा, ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ दृढ़ संकल्प, चाहे वो नैतिक रूप से सही हो या नहीं, इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है।
पर क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति थी? श्रोत इस पर भी सवाल उठाते हैं।
हाँ बिल्कुल, शायद संयोग, सही वक्त पर सही जगह होना, दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाना, ये सब भी उतना ही जरूरी था। उसका उठना और गिरना, ये 20वीं सदी में शक्ति कैसे काम करती है इसका प्रतीक है। पुरानी व्यवस्था के गुण शायद अब काम नहीं आते।
और चार्ल्स स्ट्रिंगहम ठीक उसका उल्टा है।
एकदम, उसमें वो पुराना आकर्षण है, कुलीनता है, वो गुण हैं जिनकी पहले कद्र थी। लेकिन उसका पतन शराब, दिशाहीनता और फिर युद्ध में वो गुमनाम मौत।
वो पुरानी दुनिया की हार को दिखाता है।
हाँ, कह सकते हैं वो नई कठोर दुनिया में ढल नहीं पाता। एक विश्लेषण में उसे अनुग्रह की विफलता कहा गया है।
और पीटर टेम्पलर?
वो दुनियादारी भौतिकवाद का प्रतीक है, लेकिन उसकी कहानी में भी आखिर में एक खालीपन सा लगता है।
और पामेला फ्लिटन, वो सिर्फ एक बिगड़ी हुई औरत है या कुछ और?
स्रोत उसे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मानते, वो एक शक्ति है, विनाश की, अराजकता की। विडमरपूल से उसकी शादी महत्वाकांक्षा और अराजकता का वो भयानक मिलन है जो आखिर में दोनों को ही डुबो देता है।
ये दिखाता है कि जब बेलगाम महत्वाकांक्षा बेलगाम विनाश से मिलती है तो नतीजा क्या होता है।
बिल्कुल,
तो इन किरदारों और घटनाओं के जरिए पोवल कई गहरे विषय उठाते हैं। पहला तो यही, समय, संयोग और पैटर्न।
हाँ, ये तो सबसे अहम है। जीवन तर्क से नहीं बल्कि अप्रत्याशित मुलाकातों और संयोगों से ज्यादा चलता है। पात्र दशकों बाद अचानक मिल जाते हैं, जैसे नृत्य में साथी बदलते हैं।
ये भाग्य से ज्यादा जीवन की अप्रत्याशितता पर जोर है
जी, और इसी से जुड़ा है वो इच्छा शक्ति बनाम पारंपरिक गुण या अनुग्रह का संघर्ष, विडमरपूल की सफलता, स्ट्रिंगम की विफलता। ये सवाल खड़ा करता है कि आधुनिक दुनिया किसे महत्व देती है।
क्या निर्मम महत्वाकांक्षा ही आगे बढ़ने का रास्ता है? पॉवेल इसका जवाब नहीं देते शायद।
नहीं, वो बस इस तनाव को दिखाते हैं, कोई आसान जवाब नहीं है।
तीसरा बड़ा विषय है सामाजिक बदलाव, खासकर ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था का।
हाँ, वो पुरानी अभिजात्य क्लास का पतन और एक नए, ज्यादा व्यवहारिक, शायद ज्यादा निर्मम किस्म के एलीट का उदय, युद्ध इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है, पुरानी दीवारें तोड़ता है।
पॉवेल इसे बहुत बारीकी से दिखाते हैं, बिना शोर मचाए।
बिल्कुल, और फिर कला और जीवन का रिश्ता भी है। निकोलस, जो खुद लेखक है, वो लगातार जीवन की इस उलझी हुई, बिखरी हुई सामग्री को कला के जरिए समझने, उसे एक रूप देने की कोशिश कर रहा है।
तो ये पूरी श्रृंखला ही एक तरह से जीवन के इस नृत्य को शब्दों में ढालने की कोशिश है।
हाँ, क्या कला जीवन को अर्थ दे सकती है या सिर्फ उसे दर्शा सकती है, ये सवाल बना रहता है।
और आखिर में ये शक्ति की प्रकृति का अध्ययन है। 20वीं सदी में शक्ति कैसे मिलती है, कैसे इस्तेमाल होती है और कैसे हाथ से निकल जाती है।
हाँ, विडमरपूल का पूरा करियर ही जैसे आधुनिक शक्ति की कार्यप्रणाली का एक केस स्टडी है। नेटवर्किंग, अवसरवादिता, नियमों का खेल, स्रोत इसे पॉवेल के काम का एक केंद्रीय तत्व मानते हैं।
अच्छा, अब जरा पॉवेल की शैली पर बात करते हैं, वो भी बहुत खास है।
जी, निकोलस जेंकिंस का वो फर्स्ट पर्सन नरेशन जो अतीत को याद करते हुए लिखा गया है, वो पूरी कहानी को एक खास रंग देता है, थोड़ी उदासी, थोड़ी विडंबना।
ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये यादों का ताना बाना है।
हाँ, और वो रोमन फ्लूव यानी नदी उपन्यास वाली शैली, कहानी बहती रहती है, वर्तमान की कोई बात अतीत की लंबी यादें जगा देती है।
और भाषा, पॉवेल का गद्य कैसा है?
सुरुचिपूर्ण, जटिल पर बहुत सटीक, स्रोत यही बताते हैं। उनके वाक्य अक्सर लंबे होते हैं, घुमावदार, जैसे वो सामाजिक जाल बुन रहे हों जिनमें पात्र फंसे हैं।
पढ़ने में शायद थोड़ा धीरज चाहिए होता है।
हाँ बिल्कुल, ये तेज रफ्तार कहानी नहीं है, लेकिन अनुभव गहरा होता है।
प्रतीकवाद का भी इस्तेमाल है, वो पेंटिंग तो है ही।
हाँ, वो तो केंद्रीय रूपक है, लेकिन नोट्स में शास्त्रीय मिथकों, ज्योतिष जैसे संदर्भों का भी जिक्र है, जो भाग्य और इंसान की इच्छा के बीच के तनाव को और गहरा करते हैं।
क्या पात्र अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या वे समय के खेल में सिर्फ मोहरे हैं?
ये सवाल पॉवेल छोड़ देते हैं पाठक के लिए।
और ह्यूमर, पॉवेल का हास्य कैसा है?
जोरदार ठहाकों वाला नहीं, संयमित, सूखा सा, अक्सर विडंबना से भरा।
मानवीय मूर्खताओं पर?
हाँ, इंसानी मूर्खता, दिखावा, पाखंड इसके अवलोकन से पैदा होता है। पात्र खुद को जैसा देखते हैं और दुनिया उन्हें जैसा देखती है, उसका अंतर अक्सर मजाकिया होता है।
ये पाठक को थोड़ा दूर रखता है, शायद आलोचनात्मक नजर बनाए रखने देता है।
हाँ, सहानुभूति भी होती है पर एक आलोचनात्मक दूरी भी।
कुछ खास पंक्तियां या उद्धरण जो हमारे श्रोतों में हैं?
हाँ, श्रृंखला की शुरुआत ही बहुत दमदार है। उसका भाव कुछ ऐसा है, समय की छवि मृत्यु के विचार लाई, मनुष्यों की जो ऋतुओं की तरह हाथ में हाथ डाले एक जटिल लय में नाच रहे हैं, कभी पहचाने योग्य पैटर्न बनाते हैं, कभी अर्थहीन चक्रों में टूट जाते हैं, साथ ही गायब होते हैं और फिर प्रकट होकर तमाशे को नया पैटर्न देते हैं।
वाह, ये तो पहले पन्ने पर ही पूरी थीम सेट कर देता है, समय, मृत्यु, पैटर्न, बदलते रिश्ते।
बिल्कुल, पूरे 12 खंडों का बीज इसी में है।
और विडमरपूल पर वो टिप्पणी?
हाँ, वो भी कमाल है, उसे पहली नजर में खुद से प्यार हो गया और ये एक ऐसा जुनून है जिसके प्रति वह हमेशा वफादार रहा है।
हाँ हाँ, ये सिर्फ मजाकिया नहीं, ये गहरी मनोवैज्ञानिक बात है।
बिल्कुल, ये विडमरपूल के किरदार की चाबी है, उसका आत्ममोह, उसकी महत्वाकांक्षा।
वृद्धावस्था पर भी एक चिंतन का जिक्र है।
हाँ,
बूढ़ा होना उस अपराध के लिए लगातार दंडित होने जैसा है जो आपने किया ही नहीं है। इसमें भी वही सूखा हास्य और उदासी का पुट है, उम्र बढ़ने की सच्चाई और उसमें छिपे अन्याय पर एक मार्मिक टिप्पणी।
और एक खंड का शीर्षक है, बुक्स डू फर्निश अ रूम,
किताबें कमरे को सजाती हैं।
जी, ये साहित्य और कला की भूमिरा पर पोवल के विश्वास को दिखाता है। शायद वो मानते थे कि जीवन की इस अपाधापी, इस अराजकता के बीच कला और साहित्य ही हमें कोई ढांचा, कोई समझ, थोड़ी शांति दे सकते हैं।
ये निकोलस के चरित्र से भी जुड़ता है, उसके लिखने के प्रयास से।
बिल्कुल।
तो इन सब बातों के बाद ऐसा लगता है कि इट डांस टू द म्यूजिक ऑफ टाइम हमें यही सिखाती है कि जीवन संयोग, महत्वाकांक्षा, सामाजिक बदलाव, व्यक्तिगत दुखों का एक कभी न खत्म होने वाला उलझावन नृत्य है।
हाँ, और समय ही वो संगीतकार है जिसकी धुन पर सब नाच रहे हैं, और आखिर में समय ही सबको समेट लेता है।
ये सिर्फ 20वीं सदी के इंग्लैंड का चित्र नहीं है, ये मानव स्वभाव की गहराइयों का अध्ययन है, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी, शक्ति की चाह, अर्थ की तलाश।
शायद इसीलिए ये पात्र और उनके जीवन के पैटर्न आज भी हमें अपनी दुनिया को समझने में मदद करते हैं। पॉल का ये नृत्य अभी खत्म नहीं हुआ है।
हाँ, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि अगर पॉल आज का समाज देखते, सोशल मीडिया, ये वैश्विक राजनीति, तकनीक, तो उनके पात्र कौन होते, उनका नृत्य कैसा होता।
क्या समय की धुन बदल गई है लेकिन नृत्य के मूल पैटर्न वही हैं? ये एक सवाल है जिसके साथ शायद हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।